एक बहुत भयंकर राक्षस था जिसका नाम था शकटासुर। शकटासुर कंस का भेजा हुआ एक राक्षस था और उसने वो रूप धारण किया था और इस तरह वो भगवान श्री कृष्ण की हत्या करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन भगवान ने उसे अपने पैर से ही मार दिया। और कहा जाता है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा कि जितने भी वृंदावन के अलग अलग राक्षस हैं वो सभी हमारे हृदय में किसी न किसी अनर्थ का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो शकटासुर किस अनर्थ का प्रतिनिधित्व करते हैं? आलस। आलस और पुरानी आदतों को छोड़ने में असमर्थता, यह है शकटासुर। अर्थात जब हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमारी प्रगति में अनेक बाधाएं बनती हैं, लेकिन विशेष रूप से वो बाधाएं जो भक्ति में आने के पहले हमारी बुरी आदतें होती हैं वो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं और हमारे भक्ति के मार्ग में एक बहुत बड़ा भार बन जाता है। जैसे शकटासुर एक हाथ गाड़ी के ऊपर इतना सारा भार था तो उस भार की वजह से नीचे कृष्ण जो कि नन्हे से बालक थे उनकी हत्या करने के प्रयास की, उसी तरह हमारे पिछले सारी बुरी आदतें हृदय के अंदर बैठे कृष्ण भक्ति को कुचलने का प्रयास बार बार करती रहती हैं शकटासुर। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति बचपन से तो शुद्ध भक्त नहीं होता, भक्ति में आने के पहले सभी के अलग अलग आदतें होती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। तो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना बहुत बड़ा संघर्ष है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो आंखें बंद करके बिना प्रयास के भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकता है। बार बार पग पग पर हर क्षण हमें संघर्ष करना पड़ता है अपने मन के साथ अपनी इंद्रियों के साथ, क्योंकि हमारी पूरी पुरानी आदतें इतनी बलवान हैं, प्रभावशाली हैं। अंग्रेजी में कहावत है ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पुरानी आदतें जो हैं वो आसानी से छूटती नहीं और हमारे भक्ति के मार्ग पर बहुत बड़ा भार बन जाती हैं। कहा जाता है प्रभुपाद के द्वारा कि एक बार एक चोर ने निश्चय किया कि मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा। तो चोर तीर्थ यात्रा पर जाते हैं भक्तों के एक संघ में, तो तीर्थ स्थान में पहुंचने के पश्चात सभी रात को सोते हैं, सभी सो जाते हैं लेकिन चोर के तो ड्यूटी का टाइम है, उड़ जाता है और यहां वहां देखने लगता है और आसपास कई लोगों के सुंदर सुंदर सूटकेस वगैरह देखकर आकर्षित हो जाता है, जाकर उनके बस्ते खोलने लगता है, देखने लगता है। अचानक मन में विचार आता है अरे मूर्ख तू क्या कर रहा है, तीर्थ यात्रा में आया है, यहां पर भी वही सब करेगा, कभी बदलना भी है कि नहीं कि जीवन भर ऐसे ही चोर बना रहेगा, मन में विचार आया। और ऊपर से तीर्थ यात्रा में अपराध करते हैं तो 100 गुना असर पड़ता है उसका, तो घबरा गया, बोला हाँ नहीं करना चाहिए, तीर्थ यात्रा है, यात्रा पर कम से कम मुझे विराम देना चाहिए अपनी बुरी आदतों को। तो तुरंत उन्होंने सबके बैग बंद कर दिए, लेकिन फिर लेटने गया तो नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि आदत ही नहीं थी रात को सोने की, रात भर भटकते रहते थे। तो उठे तो कहा कि कुछ तो करना है रात भर, एक का बैग उठाया उठाकर दूसरे कोने में रखा, दूसरे का बैग वहां से उठाया तीसरे कोने में रखा, तीसरे का बैग वहां से उठाया वहां रखा, रात भर सबके बैगों को यहां से वहां स्थानांतरित कर रहे थे। सुबह लोग उठे, भक्त उठे और देखने लगा अरे मेरा बैग कहां है, कल रात को मैंने यहां रखा था, विचलित हो गए। दूसरा भक्त उठा वो चिल्लाने अरे मेरा बैग कहाँ है, अरे मेरा बैग यहाँ है, मेरा बैग वहाँ है, किसने किया किसने किया। सब विचलित थे, परेशान हो गए, यहाँ तो ये तो तीर्थ यात्रा है, तीर्थ स्थान है, यहाँ पर तो भूत प्रेत नहीं होते, ऐसा काम कौन करेगा। तभी चोर उठ के बोलने लगे क्षमा करें भक्त जनो, ये काम मेरा है, क्योंकि रात को मैं सो नहीं पाता, मैं वास्तव में चोर हूँ और चोरी करने की बुरी आदत है, इसीलिए रात भर समय बिताने के लिए कुछ न कुछ तो करना था तो रात भर मैं यही करता रहा, कृपा करके असुविधा के लिए हमें क्षमा करें। तो प्रभुपाद जी कहते हैं पुरानी आदतें बड़ी बुरी होती हैं। किसी को चोरी की आदत हो तो चोरी की आदत आसानी से छूटती नहीं, लेकिन फिर भी भगवान और भक्तों की कृपा हो तो बुरी से बुरी आदत भी छूट जाती है। जैसे बैक टू गॉडहेड में एक सुंदर कथा आई थी, रशिया में एक चोर चोरी करने जाता है एक के घर में, चोरी करने का प्रयास कर रहा था, रात के अंधेरे में अचानक किसी के आने की आवाज सुनाई पड़ी तो घबरा गया, तो कहने लगा अरे भागो यहां से। तो पास में खिड़की थी, फिर खिड़की से छलांग लगाया, लेकिन छलांग लगाते लगाते सोचा कुछ तो लेके जाना चाहिए, तो खिड़की के पास एक टेबल पर एक किताब रखी थी, उठा के कूद के भागे। जाके देखा घर पे क्या थी, भगवद गीता यथारूप कृष्ण कृपा मूर्ति प्रभुपाद के द्वारा, जय श्री प्रभुपाद की। तो कहा बड़े कष्ट के साथ चुराया है, इसका उपयोग तो करना चाहिए, खोल के देखते हैं क्या, क्योंकि कवर पर तो बड़ा आकर्षक लग रहा है युद्ध वगैरह, तो शायद इसमें चोरी में मुझे कुछ मदद हो, तो जरा खोल कर देखता हूँ, शायद अस्त्र शस्त्र कैसे चलाने हो इसके विषय में वर्णन है। पढ़ने लगा गीता, और जैसे जैसे वो गीता पढ़ रहा था प्रभुपाद जी की कृपा से हृदय परिवर्तन होने लगा, और ऐसा परिवर्तन होने लगा कि शाम के समय अपने रेगुलर ड्यूटी को छोड़कर घर पर बैठकर गीता ही पढ़ता था। तो घर का सामान वगैरह कैसे आए, धन की कमी होने लगी, तो पत्नी ही परेशान थी, कहने लगे अरे आजकल आप चोरी पे नहीं जाते, क्या बात है, कोई कारण है क्या? कहने की नहीं नहीं जाता हूँ, लेकिन आजकल उत्साह कम हो रहा है। तो पुत्री ने पूछा क्या बात है, तो कहा देखो ये किताब है, इसके अंदर इतनी सुंदर बात बताई है कि धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि ये चोरी से क्या लाभ। वैसे ये गीता पढ़कर मुझे और सांत्वना मिली है कि वास्तव में सभी चोर हैं, क्योंकि सभी भगवान की संपत्ति को चुरा रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अपने इस पेशे को बदल दूं। तो पत्नी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं तो अर्धांगनी हूँ, आप जो कर रहे हो मैं भी करती हूँ। तो वो भी जप करने लगी, वो भी गीता पढ़ने लगी, वो भी भक्त बन गए। लेकिन जो पत्नी के पिता थे, ससुर थे, वो भी बहुत बड़े चोर थे। तो ससुर आके कहने लगे दामाद को, देखो दामाद ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम हमारे परिवार के ऊपर कलंक बन रहे हो, कितने पीढ़ियों से हम महान कार्य करते आए हैं उसे त्याग कर आप भगवान का नाम वगैरह लेने लगे, साधु बनने जा रहे हो, ये उचित नहीं। तो उसने कहा कि देखिए ये मुझसे अब नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर इतना सुंदर वर्णन किया है कि कैसे हृदय का शुद्धिकरण हो। तो ससुर तो माने नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अब चोरी नहीं करने वाला, पूरी तरह से निश्चय कर लिया। और वहां पर रशिया में ही मॉस्को के मंदिर में भी वो जाते थे, तो मंदिर में लोग पूछते थे कि आप काम क्या करते हो शुरू शुरू में, तो बोले क्या बताएं अब क्या काम करते हैं, शायद बताएंगे तो मंदिर में आने नहीं देंगे। तो कहने लगे कुछ विशेष ड्यूटी है मेरी, वो मैं करता हूं और किसी तरह परिवार को संभालता हूं। लेकिन धीरे धीरे चलकर हृदय इतना शुद्ध हो गया कि उन्होंने निश्चय किया कि जिस ग्रंथ ने मेरे हृदय का परिवर्तन किया अब मैं केवल इस ग्रंथ का वितरण करूंगा। और वो प्रभुपाद जी के किताबों के बहुत बड़े वितरक, बुक डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, और किताब वितरण करके ही वो अपने परिवार को भी संभालते थे और प्रचार कार्य भी करते थे। और शाम को जब घूमने निकलते किताब वितरण करने, तो देखते थे कि कौन से घर में व्यक्ति के पास माल हो सकता है कि पूरा सेट खरीद सकता है। पहले जो उनकी आदत थी देखने की, जिसमें एक्सपर्ट थे, बस उसी का प्रयोग प्रभुपाद जी की किताबों के वितरण में लगा दिया। बोले शिला प्रभुपाद की, भगवद गीता की। तो देखिए केवल एक ग्रंथ को पढ़ के हृदय का कैसे परिवर्तन होता है। तो चाहे व्यक्ति की कितनी भी बुरी आदतें क्यों न हो, एक बार भगवान और भक्तों के संग में आ जाए तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी, बड़े से बड़ा दोषी भी पूरी तरह बदल सकता है। तो शकटासुर बुरी आदतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो वैसे भगवान श्री कृष्ण गोकुल में अलग अलग लीलाएं कर रहे थे। विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है माखन चोर। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगणानां सुदुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चोरों की बात हो ही रही है, चौराग्रगण्यम सबसे बड़े चोर तो ये हैं हमारे गोपाल। क्यों क्या करते हैं? व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, व्रज में एक बहुत प्रसिद्ध चोर है। किसको चुराता है? बस मक्खन को चुराता है। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, और साथ साथ और क्या चुराता है? गोपांगना नाम सुदुकूल चोरम, गोपियों के वस्त्रों को चुराता है। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, और साथ साथ उनके विषय में चर्चा हो तो हृदय में हमने बड़े प्रेम से जितने पापों को संचय किया है उसे भी चुराते हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम, सारे चोरों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण जो करते हैं सबसे उत्तम करते हैं। चोरी भी करेंगे तो उनको कोई बीट नहीं कर सकता। चौराग्रगण्यम, सभी चोरों में सर्वश्रेष्ठ गोपाल उनकी जय हो। पुरुषम नमामि, मैं उनका आश्रय लेता हूँ। सबसे बड़े चोर माखन चोर उनका मैं आश्रय लेता हूँ, उनको दंडवत प्रणाम करता हूँ। बोले गोपाल की। तो आगे कहते हैं, श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम नवाम्बुदि श्यामल कांति चौरम। और क्या चुराते हैं? उनकी चोरी की लिस्ट काफी लंबी है, बहुत कुछ चुराते हैं। श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम, राधिका रानी के हृदय को चुराते हैं। नवाम्बुदि श्यामल कांति चौरम, और आसमान में जो बादल हैं उसके नीले रंग की कांति उसे भी चुरा लेते हैं। तो चोर है तो चोर को तो दंड देना चाहिए कि नहीं? चोरों को कहां भेजा जाता है? जेल में। तो भक्त कहते हैं, क्योंकि तुम इतने बड़े चोर हो गोपाल, इसीलिए तुम्हें हम दंड देंगे, जेल में भेजेंगे। मनमान से तामसी राश घोरे कारागृहे दुखमय निबद्ध। जेल कैसा होता है? अंधकारमय, दुखमय, वहां पर प्रकाश नहीं होता, गंदगी होती है, सब कुछ, सब सारी बुराइयां वहां प्राप्त होती हैं, ये होता है जेल। तो भक्त कहते हैं, सबसे उत्तम जेल क्या है? मेरा मन। मन मान से तामस राशि घोरे, अंधकार से भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जैसे अनर्थ हैं, ये सारी बुराइयां अंदर हैं। तो मेरे मन से उचित जेल दूसरा क्या हो सकता है? इतना गंदा है मेरा मन कि ये जेल में तुम्हें मैं रखूंगा। मन मान से तामसी राशि घोरे कारागृहे दुखमय निबद्ध। और जब मैं आपको अपने हृदय में बंद कर लूंगा तब मेरे हृदय के सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अपने लीलाओं के माध्यम से सभी लोगों को मंत्र मुग्ध करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के घर में जाकर मक्खन चुराते हैं, नवनीत चुराते हैं। गोपियां प्रेम से दिन भर माखन निकालती हैं और उसे प्रेम से ऊपर रखती हैं मटके में, लेकिन गोपाल और उनके सारे मित्रों की इतनी बड़ी गैंग है कि उनके सामने कोई गोपी अपने नवनीत को सुरक्षित नहीं रख सकती। तो गोपाल अपने सारे गोप बालकों के साथ, मित्रों के साथ जाते हैं और एक के ऊपर एक खड़े होकर बड़े प्रेम से मक्खन को चुरा लेते हैं मटके से, और यदि वो मटका बहुत ऊंचा रहा तो डंडा लेकर सीधा तोड़ देते हैं और सारा मक्खन नीचे गिर जाता है और फिर उसका आस्वादन करते हैं। लेकिन भगवान जो भी करते हैं अकेले नहीं करते, मिल बांट कर करते हैं। तो खुद थोड़ा मक्खन खाते हैं, थोड़ा बंदरों को बुलाते हैं और बंदरों को भी बांटते हैं। बंदर भी प्रेम से मक्खन खाते हैं, और जब गोपियां आती हैं और भगवान को पकड़ती हैं गोपाल को और यशोदा मैया के पास ले जाती हैं, कहती हैं देखो ये मक्खन चुरा रहा है, तो गोपाल कहते तुमको क्या लगता है हमारे घर में मक्खन नहीं है, हम क्या आपके घर में ही आएंगे मक्खन चुराने? तो यशोदा मैया कहती क्यों गोपाल तुमने माखन क्यों चुराया? कहते नहीं ये सब झूठ कह रही है, तो ये मुंह में सफेद सफेद क्या है? वो ने जबरदस्ती लगा दिया है मेरे मुंह पर, मैंने थोड़ी खाया है ये। तो गोपाल की इन मीठी मीठी बातों को सुनकर कोई भी आकर्षित हो जाता है वो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, पूरे ब्रह्मांड उनसे आते हैं, सारे गाय सारा दूध सारा मक्खन तो भगवान श्री कृष्ण की संपत्ति है, चुराने का क्या प्रश्न होता है। वो चुराते हैं तो केवल हमारे हृदय को ऐसी सुंदर लीलाओं के माध्यम से। तो कभी क्रोधित हो जाते हैं तो यशोदा मैया कहती है मत जाओ, तो भगवान श्री कृष्ण जाते नहीं, कई दिनों तक चुराने नहीं जाते। तो गोपियां आकर यशोदा मैया से कहती हैं देखो आपका गोपाल आता ही नहीं चुराने, क्या बात है। यशोदा मैया कहती है आप चाहते क्या हो, वो चुराए कि नहीं चुराए। तो वास्तव में सारी गोपियां चाहती थी कि हम इतने प्रेम से मक्खन निकाले जिससे गोपाल आकर आकर्षित होकर उसे चुराए। और कभी गोपाल को ठीक प्रकार से मक्खन नहीं मिलता तो बड़े क्रोधित होते और गोपियों के बच्चे को चिमटी खाकर भाग जाते और बच्चे रोने लगते, लेकिन गोपाल पीछे मुड़कर नहीं देखते। और कभी मक्खन का स्वाद अच्छा नहीं लगा तो वहीं मलमूत्र करके भाग जाते। तो इसके विषय में आज भी चर्चा होती है। प्रभुपाद जी लिखते हैं मलमूत्र से तो हमारा सबका संबंध रहता है लेकिन हमारे विषय में कोई चर्चा नहीं करता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने एक बार जो लीला की तो अभी तक लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे गोपियों के घर में जाके भगवान श्री कृष्ण मलमूत्र करते हैं, क्योंकि वो भगवान है, कृष्ण है, गोपाल है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। और उसके पश्चात बंदरों को प्रेम से खिलाते हैं, और जब गोपियां आकर उनको बुरा भला कहती हैं तो भगवान कहते हैं, गोपाल कहते हैं कि तुम किस मक्खन की बात करते हो, तुम्हारा नवनीत, इसके अंदर तो कोई भी स्वाद नहीं है, मेरे मक्खन, इस मक्खन को ये बंदर भी नहीं खा रहे, बंदर भी उठाकर इसे फेंक रहे हैं। तो आपको क्या लगता है आपके इस नवनीत के प्रति मैं आकर्षित हो रहा हूं। तो प्रश्न उठता है कि वृंदावन में इतने बंदर कहां से आए और भगवान के साथ इतना निकट का संबंध कैसे है। तो कहा जाता है कि भगवान अपने पिछले अवतार में प्रभु रामचंद्र के रूप में बंदरों और वानरों की सेना की इतनी मदद ली, दर दर भटक रहे थे वन वन में, लेकिन बेचारे सारे बंदर सारे वानर भूखे रहते थे और प्रभु रामचंद्र जी के पास कुछ नहीं था उन्हें खिलाने के लिए, उनकी भूख को मिटाने के लिए, लेकिन उन्होंने जी जान से प्रभु रामचंद्र जी की सेवा की और हनुमान जी और सारे वानरों ने मिलकर लंका पर ऐसा चढ़ावा किया कि रावण की हत्या हो गई और सीता देवी फिर प्रभु रामचंद्र जी के साथ आ गईं। तो इसीलिए प्रभु रामचंद्र जी इन वानरों के प्रति अपने हृदय में बहुत कृतज्ञता की भावना रखते थे। तो सोच रहे थे कि कैसे मैं इन बंदरों को इन वानरों को कुछ खिलाऊं, क्योंकि अभी तो इस लीला में मैं कुछ विशेष रूप से इनको खिला नहीं सका, इनकी सेवा नहीं कर सका। तो इसीलिए जब प्रभु रामचंद्र जी कृष्ण भगवान के रूप में आए गोकुल में तो उन्होंने सारे बंदरों को बुलाया और ऐसा मक्खन खिलाया कि सारे बंदर संतुष्ट हो गए, बोले प्रभु रामचंद्र भगवान की, कृष्ण भगवान की। तो ये कारण है कि वृंदावन में इतने बंदरों को भगवान कृष्ण मक्खन क्यों खिलाते हैं। तो एक बार प्रभावती गोपी नाम की एक गोपी थी, खैर वो आकर यशोदा मैया को कहने लगी कि यशोदा मैया देखिए, मैं ये नहीं कहती, प्रभावती गोपी जो है उपनंद की पत्नी थी, वो आकर कहने लगी कि आपके घर में तो अच्छे संस्कार सिखाते होंगे मुझे पूरा विश्वास है, और मैं ये भी जानती हूँ कि आपके घर में दूध दही और मक्खन का कोई अभाव नहीं, लेकिन फिर भी यदि आप अपने गोपाल के ऊपर जरा नियंत्रण रखें तो अच्छा होगा, क्योंकि समाज में अच्छा नहीं लगता इस तरह कोई बच्चा चुराए तो भविष्य में चलकर बहुत बड़ा चोर बन सकता है। यशोदा मैया ने कहा ठीक है मैं समझाऊंगी उसे। तो अगले दिन गोपाल प्रभावती गोपी के यहाँ माखन चुराने गए तो प्रभावती गोपी ने उसे पकड़ लिया, उसके हाथ को पकड़ा और कहने लगे आज तो मैंने तुझे रंगे हाथ पकड़ा है, अब मैं तुम्हारी माँ के पास लेके जाती हूँ जिससे आपकी माँ को आश्वासन हो जाए। तो गोपाल को पकड़कर प्रभावती गोपी जाने लगी, लेकिन जैसे यशोदा माई के घर के बाहर आई देखे नंद महाराज आ रहे हैं, तो प्रभावती गोपी घबरा गई तो उन्होंने गोपाल को अपने साड़ी के पल्लू से इस तरह ढक दिया और ऐसे ढक कर उसे अंदर लेके गई जिससे नंद महाराज नहीं देखें, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगा मेरे पुत्र के साथ क्या व्यवहार कर रही है। तो ऐसे साड़ी के पल्लू से ढक दिया गोपाल के सर को, जिससे किसी को पता नहीं लगे कौन आया है, और अंदर लेके गई और कहने, यशोदा माई देखो, मैंने आपको कल जो बात बताई थी उसका प्रमाण है, चोर को मैंने रंगे हाथों पकड़ा है, ये गोपाल है। लेकिन कृष्ण तो भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना रूप बदलकर प्रभावती गोपी के पुत्र का रूप धारण कर लिया। तो प्रभावती गोपी ने यशोदा मैया को कहा, देखो अपने गोपाल की करतूत, ऐसा कहके साड़ी के पल्लू को उठाया। यशोदा मैया ने कहा, प्रभावती जी क्षमा करें, लेकिन मुझे लगता है कुछ गलती हुई है, ये तो आपका पुत्र है। और प्रभावती गोपी ने चेहरा देखा, बोले, अरे तू यहां क्या कर रहा है, तुम यहां कैसे आ गए? और ऐसा कह के वो पूरी तरह सकपका गई, ये क्या हो रहा है, मैं तो गोपाल को अपने हाथों से पकड़ कर लाई थी, ये कहां से आ गया? और फिर भी भ्रमित थी प्रभावती गोपी ने कहा कि देखो, हमारे मासूम गोपाल पर इसी तरह गलत आरोप लगते हैं, आज बहुत बड़ा अन्याय हो जाता, बच गए। और सारे वहां बलराम जी और जितने गोपाल हैं सब जोर जोर से हंसने लगी। प्रभावती गोपी शर्मा कर बाहर आ गईं, गोपाल भी उनके साथ साथ बाहर आए, अर्थात उनके पुत्र के रूप में बाहर आकर फिर उन्होंने रूप बदला, फिर गोपाल बन गए। और प्रभावती गोपी को देखकर कहने लगे, देखो प्रभावती गोपी जी, माता जी जरा ध्यान रखिए, आज तो मैंने आपके पुत्र का रूप धारण किया, कल आपके पति का रूप धारण कर लूंगा, तब क्या करोगी? तो जरा देख के रहना, मुझे पकड़ना मत, जब मैं आऊं माखन चुराने तो मुझ पर कोई प्रतिबंध न हो। बोलो माखन चोर गोपाल की, कृष्ण भगवान की। तो ऐसी सुंदर लीलाएं करते हैं कि किसका मन आकर्षित नहीं होगा। तो ये गोपाल हैं वृंदावन के सबसे प्रमुख। तो कहा जाता है कि इसके पश्चात एक सुंदर राक्षसी, कथा के क्रम में आगे पीछे थोड़ा होगा तो क्षमा करें। तो जब गोपाल छोटे से थे और जब भी उठे भी नहीं थे, उस समय पूतना नाम की राक्षसी अपना वेश बदलकर वहां पर आई, और पूतना ने गोपाल को अपने हाथ में लिया। सारे ब्रजवासी यशोदा माई और रोहिणी ने देखा कि इतनी सुंदर स्त्री आ रही है, उन्हें लगा शायद साक्षात लक्ष्मी देवी है ये। पूतना के पास ऐसी शक्ति थी कि वो अपना रूप कभी भी कैसे भी बदल लेती थी। वो खेचरी नाम की राक्षसी थी जो हवा में भी उड़ सकती थी, और उन्होंने ब्रज में अनेक छोटे बालकों की हत्या की थी। तो उस समय कंस के आदेश से वो गोपाल के निकट आई, और गोपाल को उन्होंने देखा, गोपाल ने भी पूतना को देखा, और पूतना को देखकर समझ गए कि ये पूतना मुझे मारने आई है, और गोपाल ने अपने आंख बंद कर लिए। तो आचार्यगण तात्पर्य देते हैं कि गोपाल ने अपने आंख क्यों बंद किए, ये है भगवान। अपन रोज आंख बंद करते हैं, लेकिन इसके विषय में चर्चा का कोई विषय नहीं होता, कोई तात्पर्य नहीं देता कि रात को हम आंख क्यों बंद करते हैं। लेकिन गोपाल पूतना को देखकर आंख बंद किए, अनेक आचार्य अनेक कारण देते हैं कि गोपाल ने आंखें बंद क्यों की। एक कहते हैं कि उन्होंने देखा कि मैं यहां पर आया हूं राक्षसों का वध करने, लेकिन सभी राक्षसों में सबसे पहले ये पूतना आ रही है जो कि एक स्त्री है, तो सभी राक्षसों में पूतना जो कि स्त्री है, एक स्त्री का वध करना पड़ेगा मुझे, तो ये तो बहुत बुरी बात है, इसलिए उन्होंने आंख बंद कर लिए। फिर उन्होंने सोचा कि ये मुझे स्तनपान कराने आई है, मेरी माँ है, माँ का वध करना पड़ेगा, हाय, इसलिए आंख बंद कर लिए। कुछ और कहते हैं, उन्होंने देखा कि इस पूतना ने इतने सारे मासूम बच्चों की हत्या की, कितनी क्रूर डायन है, मैं इसे देखना भी नहीं चाहता, इसलिए आंख बंद कर लिए। और कोई और आचार्य कहते हैं कि वो आंखें बंद करके पूतना को कुछ संदेश दे रहे थे कि पूतना अभी तुम्हारा अंतिम काल आ गया है। इस तरह से अलग अलग आचार्य अलग अलग वर्णन करते हैं। खैर, पूतना ने गोपाल को अपने हाथ में उठाया और उसका स्तनपान करने लगी। पूतना के स्तनों में भयंकर विष था। कृष्ण भगवान ने, गोपाल ने न केवल उस विष का पान किया लेकिन साथ साथ पूतना के प्राण को भी वो खींच लिए। और जैसे वो पूतना के प्राण को खींच रहे थे, पूतना चिल्लाने लगी, चीखने लगी और इतने जोर जोर से पुकार मचाने लगी कि आसपास जितने भी लोग थे सब भागे भागे आए, सोचे क्या हुआ। लेकिन तब तक पूतना को इतनी वेदना हो रही थी कि वो अपने सुंदर रूप को धारण नहीं कर सकी। और फिर उसने 12 मील लंबी राक्षसी का रूप धारण किया और ऐसी भयंकर लग रही थी कि कोई भी देखे तो घबरा जाते। उनके शरीर के प्रत्येक अंग का वर्णन आता है कि किस तरह उनकी भुजाएं पेड़ों के समान, वृक्षों के समान बड़ी थीं। उनका पेट एक बहुत बड़े सूखे जलाशय के समान था। उनके पैर और जंघाएं नदी के ऊपर पुल के समान विशाल थे और उनकी आंखें और उनके नाक तो गुफाओं के समान बड़े और गहरे थे। तो इसके ऐसे व्यक्ति को देखकर कौन नहीं घबराता। लेकिन गोपाल बड़े प्रेम से पूतना के स्तनों पर खेल रहे थे। सारी गोपियां यशोदा माई आई और ऊपर जाकर गोपाल को नीचे ले आए और भगवान को धन्यवाद देने लगी कि हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपकी कृपा से हमारे गोपाल बच गए। चलो, लगता है कुछ भूत प्रेत का असर हो रहा है। तो तुरंत वो गोमूत्र लेके आए और भगवान के शरीर पर गोबर से 12 स्थान पर तिलक किया। तो गाय की कितनी महिमा है, गोपाल गो रक्षा कितना आवश्यक है। लेकिन कलयुग में बड़े दुख की बात है कि भारत जैसे देश में भी, जो कि धर्म की भूमि है, यहां पर भी भारी मात्रा में गो हत्या हो रही है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और हमारे समाज में जितनी समस्याएं हैं, जितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, इन सब का मूलभूत कारण यही है, गो हत्या। पशुओं की हत्या यदि करेंगे तो अंततः प्रकृति के नियमों के अनुसार हम पर भी उसका असर होगा। गाय इतना महत्वपूर्ण है लेकिन आधुनिक समाज में विशेषकर बच्चों को यह सिखाया नहीं जाता कि गाय कितना महत्वपूर्ण प्राणी है, वो हमारी माँ है। और खासकर बंबई जैसे शहर में जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, गायों की संख्या भी कम होती जा रही है। भविष्य में एक समय आएगा जब बड़े बड़े शहरों में बच्चे गाय अर्थात क्या ऐसा पूछेंगे। किसी बच्चे को पूछो कि दूध कहाँ से आता है, वो कहेगा भैया लेके आता है, दूध वाला भैया। क्यों, कभी गाय को देखा है नहीं कि किस तरह दूध निकालते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है गोरक्षा। एक बार, ये तब की बात है जब गायों की रक्षा होती थी, तब एक टीचर ने एक एग्जाम में प्रश्न पूछा कि गाय के ऊपर निबंध लिखो, गाय हमारी माता है इस पर निबंध लिखो। तो बच्चा बैठा था, बड़ा नालायक था, उसको कुछ पता ही नहीं था कि ये गाय हमारी माता क्यों है, मेरी माता तो घर पर है, ये गाय को क्यों कह रहा है मेरी माता है। तो उसने लिखा, गाय हमारी माता है, मुझको कुछ नहीं आता है। तो टीचर के पास पेपर आया, बड़ा क्रोधित हुआ क्योंकि वो गो रक्षा के लिए बहुत प्रयास कर रहा था। कहा, ये कैसा नालायक है, गाय के बारे में कुछ नहीं लिख सकता। उसने लिखा, गाय हमारी माता है, मुझको कुछ नहीं आता है, बैल तुम्हारा बाप है, नंबर देना पाप है। तो जानो पहले कि गाय और बैल कौन हैं और उनके संरक्षण के बिना हम अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। गाय को कोई साधारण पशु नहीं समझना चाहिए, गाय माता है और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो इसीलिए गो रक्षा के लिए कभी अभियान हो या किसी प्रकार से भगवान के भक्त उसकी मदद कर सकें तो करनी चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण गायों से बहुत प्रेम करते हैं। लोग कहते हैं कि आप गोरक्षा के विषय में इतना जोर क्यों देते हो, क्योंकि कृष्ण को प्रिय है इसलिए, यदि कृष्ण है कुत्ता मुझे प्रिय है तो हम कुत्तों की रक्षा करेंगे। लेकिन कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा है, भगवान श्री कृष्ण को गाय बहुत ही प्रिय है क्योंकि वो हमें दूध देती है और प्रत्येक बच्चा गाय के दूध को पीकर ही बड़ा होता है, तो गायों की रक्षा करना बहुत अनिवार्य है। तो यहां पर पूतना का वध हुआ तो भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं कि पूतना किस अनर्थ का प्रतिनिधित्व करती है। पूतना ने सबसे पहले सभी ब्रजवासियों के सामने ऐसा रूप धारण किया, सबको लगा कि ये कितनी सुंदर स्त्री आ गई, एक सुंदरी आ गई, और उसके सुंदर बाहरी रूप को देखकर पूतना के ऊपर ब्रजवासियों का विश्वास आ गया और वो पूतना के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे और गोपाल को उनके हाथ में सौंप दिया। अर्थात कृष्ण, कृष्ण का जन्म हुआ था और जन्म होते ही पूतना आई थी कृष्ण को मारने अपना रूप बदल के। उसी प्रकार जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं तो हमारे हृदय में कृष्ण भगवान जन्म लेते हैं, और जैसे ही कृष्ण का जन्म होता है हृदय के अंदर, तो कृष्ण को मारने के लिए, उसकी हत्या करने अलग अलग रूप धारण करके ऐसे लोग आ सकते हैं जो हमें भक्ति के असली मार्ग से पथभ्रष्ट करें। तो पूतना किसका प्रतिनिधित्व करती है? पूतना उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो भक्तों का वेश धारण कर मासूम जनसंख्या को भक्ति के नाम पर झूठ मूठ पथभ्रष्ट करते हैं, अर्थात स्यूडो स्पिरिचुअलिस्ट, जो दिखने में साधु लगते हैं लेकिन वास्तव में साधु नहीं, हृदय में पूतना जैसा विष धारण करते हैं, कृष्ण को धारण नहीं करते और कृष्ण की हत्या करने का प्रयास करते हैं। हमारे हृदय में जो उभरती हुई भक्ति है उसको मारने का प्रयास करते हैं। तो हमें सही संप्रदाय से, उचित साधु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, केवल बाहरी रूप और रंग को देखकर प्रभावित नहीं होना चाहिए, गुण क्या है, योग्यता क्या है, इसके विषय में प्रश्न करना चाहिए, अन्यथा हम भी पथभ्रष्ट हो जाएंगे। एक गांव था, उस गांव में एक साधु का वेश धारण करके एक व्यक्ति आए और उस व्यक्ति ने निश्चय किया कि साधु बनना सबसे अच्छा है क्योंकि लोग तुरंत हमारी बात मानने लगते हैं और इससे अच्छा जीवन निर्वाह होगा। ऐसा सोचकर उन्होंने वस्त्र बदले, साधु का वेश धारण किया, गांव में आए और गांव में सबके सामने आकर बैठ गए और वो कहने लगे कि देखिए, मैं आपके सामने अनेक बातें करूंगा शास्त्र के आधार पर, लेकिन मैं अपनी जुबान का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, केवल इशारों से आपको सारा ज्ञान दूंगा, जो आध्यात्मिक प्रश्न हो वो प्रश्न आप पूछ लो। तो लोग आते और प्रश्न करते मूक साधु से, उनका नाम पड़ गया मूक साधु, जो कुछ बोलते नहीं थे, केवल इशारों से कहते थे। तो कोई कहता, क्या इंद्र तृप्ति करना उचित है, ये और भगवान की भक्ति साथ साथ चल सकती है? तो वो कोई कुछ इशारा कर देते तो कहते, हाँ स्वामी जी ने कहा है कि हम कर सकते हैं और इसीलिए हम कर रहे हैं। तो इस तरह उस साधु के नाम पर पूरे गांव में सभी लोग इंद्र तृप्ति करने लगे, कहने लगे शास्त्र के आधार पर हम कर रहे हैं क्योंकि साधु ने हमें अनुमति दी है। तो ये देखकर वो गांव के मुखिया विचलित हुए, बोले इस तरह चलता रहा तो धर्म के नाम पर बहुत गलत बातें फैल रही हैं। तो उन्होंने सोचा, करें तो क्या करें, तो इनके साथ वाद विवाद करके हरा भी नहीं सकता क्योंकि ये तो मूक साधु हैं। तो उन्होंने निश्चय किया कि चलो इनका विवाद हम गांव के किसी चरवाहे के साथ करवा देते हैं। चरवाहा मतलब वो जो बकरों और बकरियों को संभालता है। तो उन दोनों के बीच में विवाद करवाया। तो उस विवाद को देखने के लिए गांव के सभी लोग उपस्थित हुए।
बोले अरे साधु का विवाद होने वाला है और देखते हैं इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। तो मूक साधु बैठे और उन्होंने पहले किया, देखो मैं जब भी धर्म के विषय में प्रचार करता हूं शब्दों का प्रयोग नहीं करता, केवल इशारों से मैं बातें करता हूं। तो फिर वो चरवाहा कहने लगा, जो कि अनपढ़ था, गंवार था, केवल बकरे बकरियों को देखता था, उसने कहा ठीक है मैं भी बिल्कुल इशारों से ही आपका उत्तर दूंगा। तो मूक साधु बोले अरे बड़ी विचित्र बात है। तो उन्होंने आरंभ किया विवाद, सबसे पहले मूक साधु ने इशारा किया ऐसे, तो चरवाहा ने देखा कि ये क्या कर रहा है, और चरवाहा ने कहा मुझे भी पीछे नहीं हटना चाहिए, और उसने कहा ऐसे। मूक साधु घबरा गए, बोले ये क्या, आज तक तो कभी मेरे साथ किसी ने ऐसा विवाद नहीं किया। उसने चरवाहे की आंखों में गौर से देखा और कहा ऐसे। तो चरवाहा ने देखा अच्छा, और उसने कहा ऐसे। मूक साधु तुरंत उनके सामने आकर सरेंडर हो गए, बोले मैं आपके प्रति समर्पित हूं, मैं हार गया, मैं जा रहा हूं गांव छोड़कर। सब चकरा गए, बोले ये क्या कर दिया भाई, आपने ऐसे इशारों से क्या व्यक्त किया कि ये मूक साधु गांव छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए। तो मूक साधु ने कहा नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़े संत विद्वान है, चरवाहे के रूप में बैठे हैं, लेकिन मैं इनके प्रति अपना दंडवत अर्पित करता हूं। बोले अच्छा आपके बीच में विवाद क्या हुआ। तो मूक साधु कहने लगे देखो मैंने पहले कहा कि आत्मा एक है, तो इस महानुभाव ने कहा आत्मा एक नहीं दो है, आत्मा और परमात्मा, इस तरह इशारा किया। तो फिर मैंने कहा कि अंततः ये आत्मा और परमात्मा पंच महाभूत के इस शरीर में स्थित है जिसमें पांच इंद्रियां हैं, इस तरह कहा। तो संत जी ने कहा कि जब तक इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं करते तब तक आत्मा परमात्मा को कैसे जान सकता है। तो ऐसा सोचा उसने, तो आज तक किसी ने इस तरह का उत्तर मुझे दिया ही नहीं था, इसीलिए ऐसे महान संत के सामने मैं समर्पित हो रहा हूं। और ऐसा कहकर मूक साधु गांव से चले गए। गांव वाले प्रसन्न थे, मुखिया ने चरवाहा को बगल में लिया, कहा क्यों भाई तुमने क्या समझा, क्या इशारा हुआ था, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा क्या बात कर रहे हो। तो उसने कहा का मुझे लगा वो कह रहा है एक बकरी मिलेगी क्या, तो मैंने कहा एक क्यों दो ले लो। तो उसने कहा यदि मैं पांच लेना चाहूं तो, तो मैंने कहा देखो ज्यादा लोभी मत बनो नहीं तो मार दूंगा। बस इतनी सी बात थी, बेचारा घबरा गया, समर्पित हो गया और गांव छोड़कर चला गया। इसमें मेरी क्या योग्यता है, मैंने तो स्पष्ट बात ही जो बात करता हूं स्पष्ट करता हूं, स्पष्ट बात कह दी उसे, वो भाग गया। तो इस तरह अनेक प्रकार से वेशभूषा बदल कर कोई आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर पाखंड मचाए तो उसे सहन नहीं करना चाहिए। इसीलिए पद्म पुराण में कहा जाता है संप्रदाय विहीना ये मंत्रस्ते निष्फला मदि, अतः कलौ भविष्यन्ति चत्वार संप्रदायन, श्री रुद्र ब्रह्मसनक वैष्णव क्षति पावन, चत्वारस्ते कलौ भव्य ही उत्कले पुरुषोत्तम। कि कलयुग में विशेष रूप से प्रत्येक व्यक्ति को उचित मार्गदर्शन देने के लिए अलग अलग संप्रदाय हुए हैं, और इन संप्रदायों में हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मंत्रस्ते निष्फला मति, जिस तरह किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाकर ही हम डिग्री प्राप्त करते हैं, पेड़ के नीचे बैठकर हम इंजीनियरिंग नहीं सीख सकते, या घर पर बैठकर किताबों को पढ़कर डॉक्टरी नहीं सीख सकते, और ऐसा सीखकर आप अपना बोर्ड भी लगाओ MBBS घर में सीखा है, कितने पेशेंट आएंगे, आपके अपने रिश्तेदार ही आपके पास नहीं आएंगे रिस्क लेने के लिए कि पता नहीं इसने क्या सीखा है। तो भौतिक ज्ञान के लिए भी हम उचित यूनिवर्सिटी में जाते हैं, शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उचित मार्गदर्शन कितना आवश्यक है। इसलिए पूतना ऐसे सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो बाहरी रूप रंग वेशभूषा से हमें भ्रमित कर सकते हैं, इससे हमें बचना चाहिए। एक दिन यशोदा माई गोपाल को अपने गोद में बिठाकर उसे लालन कर रही थी, ऊपर उठा रही थी और फिर उसे हाथ में पकड़ रही थी, फिर उठा रही थी पकड़ रही थी, और गोपाल के कार्यकलापों का वर्णन कर रही थी सुंदर गीतों में, तो बच्चों के साथ ऐसे खेला जाता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो अचानक यशोदा मैया को लगा कि गोपाल बहुत भारी हो रहे हैं, क्या बात है। बच्चे तो जितनी उनकी वजन होता है, जितना वजन होता है उतना होता है, लेकिन गोपाल ने अचानक अपना वजन बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि वो समझ गए कि अभी मेरे एक और मित्र यहां आने वाले हैं। तो जैसे ही गोपाल का वजन बढ़ गया, यशोदा माई ने गोपाल को बगल में रखा, कहने लगे, गोपाल शायद पता नहीं मैं थक रही हूं, तुम यहां रुको, मैं जरा घर के सारे काम करके आती हूं। तभी अचानक एक भयंकर तूफान भवंडर आ गया, और वास्तव में वो कौन थे? वो थे तृणावर्त। तृणावर्त तो तृणावर्त एक भवंडर के रूप में वहां आए, और उन्होंने पूरे ब्रज भूमि में इतना भयंकर उत्पात मचाया कि सभी ब्रजवासियों की आंखों में धूल झोंक दिए। किसी को कुछ नहीं दिख रहा था, कोई देख नहीं पाया कि मेरे बगल में कौन खड़ा है, कोई अपने हाथ तक को नहीं देख पा रहा था, इतना धूल उड़ा। और यशोदा माई जोर जोर से क्रंदन करने लगी, गोपाल कहाँ हो तुम, कहाँ हो गोपाल, कहाँ हो गोपाल। जहां जिस स्थान में वो छोड़ी थी वो देख नहीं सकी। यशोदा माई चिंताग्रस्त होकर वहीं पर मूर्छित हो गई। यशोदा माई के हृदय में गोपाल के प्रति इतना प्रेम था कि एक क्षण के लिए भी गोपाल उनके आंखों के सामने न रहे तो यशोदा माई सहन नहीं कर सकती थी। और तब तृणावर्त, जो कि इस भवंडर के रूप में आए थे, उन्होंने गोपाल को अपने हाथ में उठाया और अपने भुजाओं में उठाकर वो सीधा ऊपर गए, और आसमान की ऊंचाइयों में जाने के पश्चात उन्होंने निश्चय किया था कि गोपाल को मैं ऊपर से नीचे पटक दूंगा, या उसे उसका गला दबा दूंगा, उसकी हत्या कर दूंगा। लेकिन जैसे ही तृणावर्त ब्रज भूमि के ऊपर 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 आसमान की चढ़ाइयां चढ़ने लगे, अचानक भगवान ने अपना वजन बढ़ाना आरंभ किया। भगवान कृष्ण गोपाल, जो कि छोटे से बालक थे, अचानक बहुत भारी होने लगे। तो तृणावर्त को लगा, ये क्या, ये छोटा बच्चा अचानक इतना भारी क्यों हो रहा है, ऐसी क्या बात है, ये तो कुछ भोजन भी नहीं कर रहा फिर भी इसका वजन बढ़ रहा है, हवा में जा रहा हूं फिर भी इतना वजन। और तृणावर्त जो वास्तव में बड़े शक्तिशाली राक्षस थे, वो भगवान के उस वजन को सहन नहीं कर सके, उस भार को उठा नहीं सके, और उन्होंने निश्चय किया कि अब इस भारी भरकम गोपाल को मैं उठाकर नीचे पटकता हूं, नहीं तो इस वजन की प्रभाव से मैं भी नीचे गिर जाऊंगा। लेकिन तभी गोपाल ने क्या किया, अपने सुंदर करकमलों से उन्होंने तृणावर्त के गले को पकड़ लिया, और तृणावर्त प्रयास कर रहा था कि गोपाल को उठाकर नीचे फेंकूं, लेकिन भगवान ने तृणावर्त के गले को ऐसे पकड़ा कि तृणावर्त लाख प्रयास करके भी गोपाल को उठाकर फेंक नहीं सका। और दूसरी ओर उनका वजन बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। तृणावर्त के पसीने छूटने लगे, कुछ नहीं कर सका, और अंततः भगवान कृष्ण गोपाल इतने भारी हो गए कि तृणावर्त को लेकर वो पूरी रफ्तार से नीचे जमीन की ओर आने लगे। तृणावर्त और गोपाल सीधे आकर जमीन पर एक बहुत बड़े कठोर चट्टान पर आ गिरे। गोपाल को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तृणावर्त का सर फूट गया, लहूलुहान हो गया, और तृणावर्त ने अपने देह को त्याग दिया। बोलो कृष्ण भगवान की। कृष्ण भगवान को कुछ नहीं हुआ। सारे गोपी यशोदा माई भागे भागे आकर देखे, धड़ाम की आवाज कहां से आई, देखे इतना विशाल राक्षस जमीन पर गिरा है और पूरे शरीर से खून बह रहा है, और देखा कि गोपाल उनकी छाती में प्रेम से खेल रहे हैं। सब अचरज में पड़ गए, ये गोपाल पता नहीं इस तरह इस राक्षस के संग में कैसे आए। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे थे कि वास्तव में गोपाल के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। गोपाल तो खेलना चाहते थे, गोपाल को तो खेलने में आनंद आता है। पहले यशोदा मैया के गोद में खेल रहे थे, फिर तृणावर्त ने जब उन्हें उठाया तो गोपाल ने देखा कि तृणावर्त की छाती बहुत चौड़ी है, बड़ा अच्छा प्लेग्राउंड है खेलने के लिए। और वो केवल त्रिणावर्त की छाती में आनंद के साथ खेल रहे थे, मजे लूट रहे थे। और जब त्रिणावर्त नीचे गिर गए, गिरने के बाद भी त्रिणावर्त की छाती पे बस वो खेल ही रहे थे, क्योंकि गोपाल के जीवन में तो बस एक ही लक्ष्य है, आनंद। आनंद मायोभ्यासात्, हर परिस्थिति में केवल आनंद। चाहे कोई राक्षस आए, कोई भक्त आए, चाहे कोई भी आए, गोपाल तो बस खेल खेल में भी और युद्ध में भी केवल आनंद ही आनंद का अनुभव करते हैं। तो तृणावर्त किस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं, तृणावर्त का हमारे भक्ति के जीवन से क्या संबंध है? तृणावर्त जब आए तो बहुत ही भयंकर भवंडर के रूप में आए। तृणावर्त आए तो बहुत भयंकर तूफान के रूप में, और उसके माध्यम से उन्होंने लोगों के आंखों में धूल झोंक दिया। अर्थात तृणावर्त से हम क्या सीख सकते हैं कि विभिन्न शास्त्रों के अनेक अनेक श्लोकों को तोड़ मरोड़ कर जब प्रस्तुत किया जाता है, जिन्हें कहते हैं मानसिक तर्क वितर्क, मानसिक तर्क वितर्क करके श्लोकों को तोड़ मरोड़ कर जब प्रस्तुत किया जाता है, तो लोगों की आंखों में हम धूल झोंक रहे हैं, शास्त्रों के असली तात्पर्य से उन्हें वंचित कर रहे हैं।